मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। AFEIS के आज 17 दिसंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके जो नियामकीय अधिकार हैं बैंकों को लेकर के, खासकर उसके बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में एक खबर छपी है। देखिए, खासकर मैंने ये महसूस किया है कि सिविल सर्विस के प्री एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स से जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूं, इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूं, तो उसकी तैयारी नो डाउट कि इकोनॉमिक्स के मूलभूत सिद्धांतों से तो होती ही है। साथ ही साथ उसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी दे दी जाती है, उन पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिनके बारे में आप किताबों में भी नहीं पढ़ते हैं, सिलेबस में तो खैर कुछ दिया हुआ ही नहीं है, अखबारों में जरूर वो टर्मिनोलॉजी कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन स्टूडेंट का ध्यान उस पर नहीं जा पाता। और स्वाभाविक भी है, अगर चला भी गया तो स्टूडेंट ये समझ नहीं पाते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में हम जैसे लोगों का यह दायित्व तो बनता है कि हम उन टर्मिनोलॉजी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करें और उनके बारे में आपको बताएं। आज के बिजनेस स्टैंडर्ड के फ्रंट पेज पर ही एक न्यूज है और वो है कि फिनटेक फर्मों के लिए एमएफ का रास्ता खुला। अब यहां देखिए कि ये पूरे के पूरे न्यूज में क्या बातें हैं, वो कौन सी दो टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। दोस्तों, पहला है फिनटेक फर्म। तो ये फिनटेक फर्म क्या है? देखिए, सिंपल तरीके से पूछ लिया जाएगा एग्जामिनेशन में कि भाई फिनटेक क्या होती है। ये दो शब्दों से मिलकर, हालांकि है बड़ा सरल, आप देखिए, बस एक बार आप कहीं से पढ़ लें सुन लें तो बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। इसके लिए कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। फिन यानी कि फाइनेंस से बना हुआ है, टेक यानी कि टेक्नोलॉजी, दो शब्दों से मिलकर के बना है, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी। तो आप इसे कह सकते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो यह हुआ क्या? इसका मतलब है कि अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे केवल इन दो शब्दों को जान लेने के बाद, तो आप अर्थ निकाल लेंगे कि ये फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं जो फाइनेंस का काम करती हैं। अब देखिए, फाइनेंस का काम करने वाली दुनिया भर की कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी भी कहीं ना कहीं फाइनेंस का काम करती है। तो ये जो फाइनेंस का काम करने वाली कंपनियां हैं, ये वित्तीय कंपनियां हैं। फाइनेंस मतलब वित्तीय, हिंदी में हो गया वित्तीय तकनीकी कंपनियां, वित्तीय तकनीकी कंपनियां, वित्तीय कंपनियां लेकिन फाइनेंस का काम करती हैं, राइट? तो ये जो कंपनियां हैं इन्हें हम कहते हैं फिनटेक कंपनियां। और ये जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या किन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही होंगी। ये कंपनियां हैं इंटरनेट का यूज करती हैं, मोबाइल डिवाइसेस का यूज करती हैं, ये बकायदे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, क्लाउड सर्विसेज जो होती हैं उनका यूज करती हैं, बिजनेस टू बिजनेस के लिए भी और बकायदे अपने कस्टमर से कॉन्टेक्ट करने के लिए भी, जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उनमें वो इनका इस्तेमाल करती हैं। स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी के जो एप्स आ गए हैं वो भी इसी के तहत आते हैं, ठीक है। अब ये होगा फिनटेक कंपनी। ये अभी न्यूज में क्यों आई? सवाल ये है कि क्या सीधे सीधे तो अखबार छापेंगे नहीं? तो न्यूज में ये इसलिए आई कि जो हमारे यहां सेबी है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसने अब इन फिनटेक कंपनियों को ये अनुमति दे दी है कि ये संपत्ति प्रबंधन कंपनियां शुरू कर सकती हैं। संपत्ति प्रबंधन कंपनियां, अब आप देखिए संपत्ति प्रबंधन कंपनियां, अब आपको इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए कि संपत्ति प्रबंधन कंपनियां क्या हो गया। संपत्ति यानी कि एसेट प्रबंधन मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC, एसेट यानी कि मान लीजिए कि मेरी संपत्ति है, आपकी संपत्ति, 50 लोगों की संपत्ति है, वो अपनी संपत्ति यानी कि कैश धन आप किसी कंपनी को सौंप देते हैं और वह जो कंपनी है आपके इस धन का प्रबंधन करती है। उसे लगता है कि ठीक है, इसने 5 करोड़ रुपए दिए हैं तो 1 करोड़ रुपए का शेयर खरीद लो, 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद लो, 2 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी खरीद लो। तो इस तरीके से वो आपके बिहाफ पर आपकी संपत्ति को मैनेज करते हैं। ऐसी कंपनियों को हम कहते हैं संपत्ति प्रबंधन कंपनियां। और जो HDFC बैंक है, भारत की सबसे बड़ी संपत्ति प्रबंधन कंपनी है, ये दो टर्मिनोलॉजी आपको पता लग गई, और न्यूज कुल मिलाकर के ये है कि जो हमारी सेबी है, सेबी ने अब ये कहा है कि जो फिनटेक जो कंपनी है ये बकायदे संपत्ति प्रबंधन कंपनियां भी शुरू कर सकती हैं, शर्त उसमें ये रखा है कि ये जो कंपनियां हैं इनकी जो हैसियत है वो 100 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, कम से कम 100 करोड़ रुपए की हैसियत होनी चाहिए। अब सीधी सी बात है कि सेबी के इस नियम के बाद कुछ शब्द आप लगातार सुनते आते हैं, फोन पे सुना होगा, चलिए हो सकता है कि इसका नाम ना सुना हो, पेटीएम जरूर सुना होगा, जो मोबीक्विक है ये जरूर सुना होगा, अमिताभ बच्चन जी इसका एड भी दे रहे थे मोबीक्विक। अब ये जो कंपनियां हैं, अब आप देखिए कि किस तरीके से फिनटेक कंपनियां हैं और इनको बकायदे अब संपत्ति प्रबंधन कंपनियां शुरू करने की अनुमति मिल सकती है, ये न्यूज थी। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं लेकिन स्टूडेंट से सामान्य तौर पर वो छूट जाया करती हैं, तो इस दृष्टि से मैंने ये तथ्य आपके सामने रखे हैं। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट की दो बातों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। पहला, आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन के बारे में जनहित याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि बेहतर होगा कि एक समिति बनाई जाए, तो उस समिति में जो किसान है उनके प्रतिनिधि हों, सरकार के प्रतिनिधि हों, कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, और सरकार को चाहिए कि इसका निपटारा जल्दी से जल्दी करे, नहीं तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। चलिए, एक सिंपल सी बात है, आप इसका उपयोग कैसे करेंगे, आपके लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है। देखिए, होता क्या है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो आंसर राइटिंग होती है उसमें आप एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी आपको उदाहरण देने की जरूरत पड़े तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप लेटेस्ट उदाहरण दें, एग्जाम्पल दें। मान लीजिए कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्र का प्रशासन चला रही हो, ठीक है। अब आप देखिए कि किसान का आंदोलन हो रहा है, किसान और सरकार के बीच में एक तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई है, वार्तालाप चल रहा है, इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे रहे कि ऐसी आप कमेटी बनाइए, मतलब सरकार इसका हल अपने ढंग से नहीं ढूंढ पा रही है, तो जनहित याचिका का दायरा तो बहुत व्यापक है, सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट इसके बाद में गाइडलाइन जारी कर रही है, तो लग रहा है ना जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ कर रही हो, सुप्रीम कोर्ट ही प्रशासन को निर्देश दे रही है कि आप ये उपाय ढूंढिए। तो अगर इस तरह के कोई प्रश्न पूछे जाते हैं न्यायिक सक्रियता को लेकर के, तो बकायदे आपको चाहिए कि आप इस तरह के लेटेस्ट जो एग्जाम्पल हैं अपने आंसर में शामिल करें। इसी तरह से एक और जनहित याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया है कि जो पर्सनल लॉ होते हैं जैसे कि गुजारा भत्ता देना है, तलाक के बाद गुजारा भत्ता देना है, तो इन सब के बारे में एक ही कानून होना चाहिए, तलाक कैसे दिया जाएगा, वो कैसे हो सकता है, गुजारा भत्ता उसे कैसे मिलेगा तलाक के बारे में, तो जनहित याचिका दायर हो गई। अब इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो कुल मिलाकर के ये कि भैया ये काम सरकार का है, सरकार इस पर कानून बनाए, क्योंकि सरकार ही वो होती है कि जिसकी उंगलियां लोगों की नब्ज पे होती हैं, वो समझेगी, सरकार समझेगी कि लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी चलिए, इस पर सुनवाई हो रही है, देखते हैं कि क्या होता है। तो अब आप देखिए कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट अब करने जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इस बारे में सरकार कानून बनाए, और स्वाभाविक है कि सरकार ही इसके बारे में कानून बना सकती है। तो ये जो घटनाएं घटित होती हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाना है, और यही छोटी सी समझ आपको सिविल सर्वेंट बना देती है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और देखिए मुख्य विषय को मैंने इस विषय को आज इसलिए चुना है क्योंकि इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि सरकार ने तो नहीं कहना चाहिए कि बैंक ने इस तरह की एक रिपोर्ट दी है, एक सिफारिश की है, कहना चाहिए कि जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं उनको बैंक खोलने की अनुमति दी जाए, इसको लेकर के काफ़ी आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, हम लोगों ने भी इस पर विस्तार के साथ बातें की थी। आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में देवाशीष बसु का एक आर्टिकल छपा है, बैंकिंग कॉरपोरेट स्वामित्व से जुड़ा गलत विमर्श। दोस्तों, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसका जो लास्ट पैरा है वो बहुत महत्वपूर्ण पैरा है। इसमें उन्होंने ये बताया कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बेसिकली हमारे देश के सभी बैंकों को रेगुलेट करती है, उसके नियामक है, मतलब ये नहीं कि बैंक अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, बकायदे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनकी निगरानी में उन्हें काम करना पड़ता है। तो अब एक बात कही जा रही है कि औद्योगिक घरानों को अगर बैंक का स्वामित्व दे दिया गया तो फिर ये मनमानी करेंगे। इसके बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं। अंतिम पैरा में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि बैंक के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इतने अधिकार हैं कि यदि वह चाहे, और यदि वह चाहे की बात नहीं है कि उसे चाहना ही चाहिए, कि वह बैंकों की बकायदे निगरानी करता रहे, और अगर वो अपने अधिकारों का उपयोग करती है तो कोई भी बैंक मनमानी नहीं कर सकता। अब ये बात अलग है कि वह इनका उपयोग करती है या नहीं करती है। तो वो कौन-कौन से रिजर्व बैंक के पास ऐसे अधिकार हैं कि वो औद्योगिक घरानों को गलत काम करने से रोक सकती हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे 5 पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कुछ बताऊं कि जो बैंकिंग नियम अधिनियम की धारा 35, एक जो अच्छा स्टूडेंट होगा तैयारी करने वाला, वो ये मान करके कि नहीं, ये जो टॉपिक है एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, डिसाइड कर लेगा वो नहीं, एग्जामिनेशन के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे मैं अच्छे से तैयार करता हूं। तो यार इसमें है ना बैंकिंग नियम अधिनियम की धारा जो 35 है ना, इसको भी नोट कर लो, याद कर लो कि अधिनियम की धारा 35। जब लिख करके आएगा तो एग्जामिनर भी सोचेगा कि वाह यार क्या स्टूडेंट है, क्या तैयारी की है। तो इस धारा के तहत बकायदे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो जो दूसरे बैंक हैं उनके बही खातों की पड़ताल कर सकता है, उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं, उसके जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ये उसके पास अधिकार है। दूसरा ये अधिकार है कि अगर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कि सरकार से सिफारिश कर दे कि नहीं, इस बैंक को अब डिपॉजिट लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, तो सरकार उसे आदेश देगी कि ये बैंक अब डिपॉजिट पब्लिक से नहीं लेगा और अपना काम काज समेटे, अभी अपने बैंक को बंद करे। इसी तरह से एक और धारा के तहत जो आरबीआई है, सोचिए कि उसको इतना अधिकार है कि वो किसी भी बैंक के जो चेयरमैन होते हैं, उनके जो निदेशक होते हैं, उनके जो सीईओ होते हैं, और यहां तक कि किसी दूसरे कर्मचारी को भी हटा सकता है, रिजर्व बैंक हटा सकता है। इसके बाद एक और भी पॉइंट है कि आरबीआई केवल, जैसे किसी बैंक ने अपने सीईओ की नियुक्ति कर दी, तो ये नहीं कि नियुक्ति हो गई, आरबीआई से उसे मंजूरी लेनी पड़ेगी कि भैया हमने इसको अपॉइंट किया है, आप इसे मंजूरी दीजिए, तो वो मंजूरी देता है और बकायदे उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसमें वो अपना एक प्रतिनिधि भी रखता है, तो प्रतिनिधि लगातार निगरानी रखे हुए है। और एक पॉइंट ये भी है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बकायदे जब भी चाहे उन बैंकों की ऑडिट कर सकता है। तो अब आप देखिए कि ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और इसके आधार पर वो किसी भी बैंक पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऐसा कर ही नहीं रहा है तो फिर कोई क्या करेगा? तो मुझे लगता है कि अपने उत्तर को बैलेंस बनाने के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इसीलिए आज के मुख्य विषय के लिए मैंने इस टॉपिक को चुना है। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से 4 दोस्तों के नाम हैं अभिनव मिश्रा, विश्व बाली, काशीनाथ बाटकर और विकास सक्सेना। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।